मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 30 अगस्त 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं नवनीत कुमार सरोज, आप आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, शैली अग्रवाल गुना मध्य प्रदेश से हैं, और विपुल शुक्ल, आप उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। तो नवनीत, शैली और विपुल, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 27 और 28 के बारे में। आपको लग रहा होगा कि अनुच्छेद 27 28 के बारे में बात करने की बात ये कहां से आ गई, इसका खुलासा मैं बाद में करूंगा। ये आप मान करके चलें कि करंट अफेयर्स का ही हिस्सा है। तो आइए पहले हम थोड़ी सी दूसरी बातों को देख लेते हैं, दूसरी खबरों को देख लेते हैं। मित्रों, जो अभी जो महत्वपूर्ण खबर है, आप देख रहे हैं कि मुंबई में भयानक रूप से बारिश हो रही है, भयानक बारिश हो रही है। 2005 के बाद फिर से इतनी अधिक बारिश वहां हो रही है। एक साल पहले मद्रास में भी यही स्थिति हुई थी और उसको लेकर के सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, मेंस में पूछा गया था। तो हम मान सकते हैं कि मुंबई की बारिश पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन मित्रों, जो मुंबई की जो बारिश पर जो प्रश्न बनेगा, मैं अभी जो खासकर अपनी तरफ से जो प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं, वो सच पूछिए तो मुझे आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ ये मामला दिखता है। मामला तो ठीक है, वर्षा से जुड़ा हुआ है और क्यों इतनी बारिश होती है इसका कारण भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसकी संभावना कम है क्योंकि मुंबई में जो वर्षा होती है उसका बहुत कोई एक्सक्लूसिव अलग से रीजन नहीं होता। वो समुद्री तट पर है तो समुद्री तट पर जनरली ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। और आपने खबरों में यह भी पढ़ा होगा कि ऊंची लहरें उठने की संभावनाएं, हाई टाइड्स की संभावनाएं बन रही है, जो समुद्रों में जो एक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। मेरी सलाह आपके को यहां थोड़ी सी दूसरी है। दूसरी यह है कि देखिए, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है और हर साल मेंस में एक क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट पर तो आता ही आता है, कम से कम एक प्रश्न। हो सकता है कि आप सोचें कि यार एक टॉपिक है और एक प्रश्न है तो इसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगा। एक तो दोस्तों, आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या क्या होगा। आपके हाथ से 12.5 नंबर बिल्कुल जीरो में तब्दील हो जाएंगे, जिसमें से आप 3-4 नंबर तो कम से कम हासिल कर ही सकते थे केवल थोड़ी सी तैयारी से, कोई बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपदा प्रबंधन पर पूछे गए जब आप प्रश्नों को पलट कर देखेंगे अनसॉल्व पेपर में, तो आप पाएंगे कि बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे कोई सिद्धांतों की बात नहीं की जाती है, कोई संस्थाओं की बात नहीं की जाती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें की जाती हैं। तो मित्रों, जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जैसे अभी मुंबई में वर्षा के लिए जो बचाव किए जा रहे हैं, आप उन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वाच कीजिए, सतर्कता से देखिए। आम देखिए, आम जो नागरिक है वो तो ठीक है, सुन लिया उसने कि ये बचाव काम है, ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। आप थोड़ा सा सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में देखिए कि कैसे पूर्व सूचनाएं दी जा रही हैं, एडवाइजरी जारी कर दी गई 11 राज्यों के, सब न्यूज में ही है, मैं न्यूज की ही बात बता रहा हूं, केवल उनको सुनने का तरीका आपका बदल जाना चाहिए। अखबारों में भी है, पूर्व सूचनाएं दी जा रही हैं, किस तरीके से सूचना तंत्र स्थापित कर दिया जाता है, एकदम तुरंत सूचना तंत्र स्थापित कर दिया जाता है कि अगर कोई संकट है तो आप यहां खबर कीजिए, आप कहीं फंसे हुए तो आप इस नंबर पर खबर करके और हमें बताइए। आप देखिए कि कल के दूरदर्शन न्यूज में तो बकायदे दिखा भी रहा था कि ये है, आप इस नंबर पर ट्वीट कीजिए, और कितने, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के राजस्थान आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम तक पर ट्वीट है। इसकी संवेदनशीलता आप इसे समझ सकते हैं, आप ट्वीट कीजिए, तुरंत वहां आपके पास कोई ना कोई पहुंचने की कोशिश करेगा। अपील की जा रही है, बड़े बड़े लोगों के द्वारा अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के सचिन तेंदुलकर जैसे जो सेलिब्रिटी हैं वो तक अपील कर रहे हैं ताकि पब्लिक सपोर्ट हासिल किया जा सके। देखिए, यानी कि पब्लिक सपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिर बचाव दल काम में लग गए हैं, है ना, दोनों तरह के बचाव दल। देखिए, एक तो राष्ट्रीय स्तर का आपदा संगठन है, आपदा प्रबंधन का संगठन है, और दूसरा राज्य स्तर के भी आपदा प्रबंधन के संगठन है। आप देखिए कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। वो जब काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ रेस्क्यू बचाव काम जारी है, फिर जो लोग फंस गए हैं उनको भोजन भी उपलब्ध कराना है, उनको पानी भी उपलब्ध कराना है। ऐसी स्थिति में लोग बीमार पड़ने लगते हैं तो उनको वो भी देखना है कि बीमारी ना फैलने पाए, तो इलाज की भी व्यवस्था करनी है। लोगों को निकाल करके आप कहीं कैंप लगाएंगे, उनको बसाना भी है, कुछ दिनों के रहने का उनका इंतजाम करना है। भीड़ भाड़ न हो इसके लिए आपने स्कूलों में जो संस्थान है उनमें आपने छुट्टियां कर दी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं कि आप सब आइए यहां। केंद्र सरकार उनको बकायदे राज्य सरकार को हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दे रही है। तो अब आप देखिए कि हैं ये सारी चीजें छोटी छोटी जो न्यूज में हम सुन रहे हैं, और मैंने इसमें एक भी बात अपनी तरफ से नहीं जोड़ी है, मैंने सारी लाइनें केवल न्यूज से ही ली है। तो इन सब को जोड़ दीजिए, आप इकट्ठा कर लीजिए, तो आपको आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है पता लग गया। और यही अभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दोस्तों रिक्वायरमेंट भी है, राइट। जो दूसरी खबर थी वो प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट है कि वस्तु एवं सेवा कर के बारे में उन्होंने बात कही कि 125 करोड़ का देश और वहां इसका लागू हो जाना जीएसटी का अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और है मित्रों, ये आसान काम तो नहीं है। एक तो इतने राज्यों से इसकी अनुमति ली जानी थी, पहले तो संसद से ही पारित होने में इसे कितने वर्ष लग गए, और अभी की सरकार को भी कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि दोनों सदनों से ये पारित हो, दोनों सदनों से पारित होने के बाद फिर राज्यों से पारित हो, है ना। तो ये सारी चीजें हुई, आप जानते हैं। अब ये जीएसटी लागू भी हो गया है और ये खबरें भी आने लगी हैं कि इसके प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कहा कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारा बेटर हो गया, अब ट्रकों को ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ता, जो सफर वो 5 दिन में पूरा करते थे अब वो 3 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो इससे तेल की भी बचत हो रही है, ढुलाई में भी कम पैसा लगेगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये सारे प्रभाव आपको देखने होंगे। और एक खबर ये भी आई है कि सर, एक महीने का जो कलेक्शन हुआ है वो कलेक्शन भी सरकार के खजाने में बढ़ गया है, मतलब जीएसटी के कारण। बहुत से लोग अब रजिस्ट्रेशन करा करके एक विधिवत तरीके से व्यापार करने लगे हैं। इनकम टैक्स में भी जो अपना फार्म आवेदन जमा करने वाले लोगों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सब उसके प्रभाव हैं और आपको इन प्रभावों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और यहां मैं स्पेशली एक बात आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि योजना पत्रिका का स्पेशल इश्यू इस पर आया था और उसके आर्टिकल्स हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। योजना पत्रिका और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स को आप ये मान करके चलें कि वो किताब के पन्ने ही आपको दिए जा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पत्रिका समझ करके उसे हल्के फुल्के रूप में मत लीजिएगा। मित्रों, मुझे जहां तक जीएसटी को लेकर के जो बात समझ में आती है कि 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी मुझे लग रहे हैं, 3 पॉइंट अभी अक्टूबर के एग्जाम के लिए। पहला तो यह है, इसका समग्र आर्थिक प्रभाव क्या है, कैसे यह हमारे देश की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। बल्कि सच पूछे तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, क्योंकि यह तो केवल इकोनॉमी की बात हो गई, वित्तीय संघवाद मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। फेडरलिज्म, यह फेडरलिज्म का बिल्कुल एक नया स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, जहां इतने सारे राज्यों ने इसे स्वीकार किया है और वित्तीय मामलों में अब जो निर्णय लेने के जो अधिकार हैं वो आपको मालूम है कि जीएसटी काउंसिल को दे दिया गया है। तो जो वित्तीय संघवाद है वो बहुत परफेक्ट तरीके से इसमें दिखाई दे रहा है, काम कर रहा है। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए, इस पर बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और फिर भ्रष्टाचार पर यह किस तरीके से अंकुश लगाएगा, ये 3 टॉपिक मैंने अभी आपको दिए हैं, इन पर आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, और इसके लिए हम लोग योजना के आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद मित्रों, एक जो खबर थी, हालांकि अब उस पर बातें होंगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स देशों की के सम्मेलन के लिए चाइना जा रहे हैं, तो वो ब्रिक्स सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो म्यांमार की भी यात्रा करेंगे, म्यांमार चूंकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र पड़ोसी होने के नाते, तो उनकी यह जो यात्रा होगी सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होगी। तो उसको फिर हम लोग जब यात्रा शुरू हो जाएगी और जो उस समय अखबारों में चीजें आएंगी उस दौरान देखेंगे। एक छोटी सी खबर और थी फ्रेंड्स, वो खेल दिवस को लेकर है। 29 अगस्त को हमारा देश खेल दिवस मनाता है और हमारे जो हॉकी के जादूगर खिलाड़ी रहे हैं ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस को भारत के खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और हमारे राष्ट्रपति जी ने कुछ लोगों को खेल पुरस्कार प्रदान की है। तो देखिए अब सिविल सर्विस में तो इस तरह की चीजें पूछे जानी बहुत पहले से बंद हो गई हैं। हाँ, अगर आप दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए कि खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, जो बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है उनके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। मित्रों अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। देखिए होता क्या है कि कभी कभी हम देखते हैं मेंस में कि कोई सवाल पूछा गया है और हमें लगता है कि ये क्यों पूछ लिया गया, इसलिए क्योंकि उसका सीधा संबंध हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई नहीं देता, करेंट में दिखाई नहीं देता कि वर्तमान में ही सामयिक कोई घटना घट गई हो। लेकिन इनफैक्ट सच यह है कि कोई ना कोई घटना घटी हुई होती है, जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर। देखिए कंपलसरी तो नहीं है कि घटी हुई घटना होगी उसी को पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाना चाहिए, नो ऐसा कोई कुछ नहीं है। लेकिन सामान्यतया वो घटना घटित हो चुकी होती है, अनफॉर्चुनेटली हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे मैं भी अभी आपको बताऊं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जो अभी जो बात कही है, जो इजाजत दी है राज्य सरकार को, वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन मैंने देखा है कि वो न्यूज में भी महत्वपूर्ण तरीके से हाईलाइट नहीं, अखबारों में भी इस घटना को इस डिसीजन को महत्व नहीं दिया गया है। हाँ, दैनिक भास्कर में जरूर उस पर एडिटोरियल कमेंट आया है और उस एडिटोरियल कमेंट को ही आधार बना करके मैंने इसे मुख्य विषय के रूप में चुना है क्योंकि मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूम पड़ा। तो मित्रों कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी अनदेखी इसलिए हो जाती हैं या कह लीजिए कि साइड में चली जाती है क्योंकि दूसरी चीजें उसी दौर में बहुत ही प्रोमिनेंट होती हैं। जैसे आपने महसूस किया होगा कि अभी लगभग 8 दिन एक आध सप्ताह से आपको बहुत ज्यादा क्लिपिंग्स मिल रही है, 10-1 दिन से क्लिपिंग्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। उसका कारण क्या है? अखबार तो उतने ही पेज के छप रहे हैं क्योंकि इस दौर में घटनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो खूब घटित हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक पर डिसीजन आ गया, प्राइवेसी पर डिसीजन आ गया, फिर आप ये राम रहीम डेरा सच्चा सौदा वाला जो मामला है इसको देख लीजिए। तो जब इतनी सारी घटनाएं एक सप्ताह के अंदर घटित होने लगे तो स्वाभाविक है कि फिर आपके लिए प्रेस क्लिपिंग्स की संख्या बढ़ानी ही मुझे पड़ेगी क्योंकि अखबार लिख रहे हैं। ऐसा होता है तो जहां इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही होती हैं तो जो दूसरी थोड़ी सी सामान्य किस्म की घटनाएं होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, राइट? तो मित्रों अभी जो एक घटना हुई है, देखिए हुआ क्या है कि 2002 में जो आपके गुजरात में जो दंगे हुए थे तो उन दंगों में बहुत से धार्मिक स्थल नष्ट हो गए थे, ठीक है, धार्मिक स्थल नष्ट हो गए थे। तो गुजरात हाई कोर्ट में उस समय जब मामला गया तो गुजरात हाई कोर्ट ने, जिसे हम गोधरा कांड के नाम से जानते हैं, तो उसमें से उन्होंने कहा कि दंगों के बाद जो 500 ऐसे आराधना स्थल नष्ट हुए हैं, धार्मिक स्थल नष्ट हुए हैं कह लीजिए, उनकी मरम्मत सरकार कराए, सरकार को जिम्मेदारी दी गई कि उनकी मरम्मत सरकार को कराना चाहिए धार्मिक स्थलों की। राज्य सरकार हाई कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में चली गई, राइट? अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया याचिका को। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें महत्वपूर्ण कही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जो धार्मिक स्थल हैं उनके रखरखाव के लिए, उनके रखरखाव के लिए जनता पर सरकार कोई भी कर लगा नहीं सकती और इसका उल्लेख बाकायदे अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 27 में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि के लिए सरकार किसी पर भी किसी तरह का कर नहीं लगा सकती, उन्हें कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो सीधी सी बात है कि सरकार अपने खजाने से किसी भी धार्मिक स्थल की मरम्मत नहीं करा सकती क्योंकि सरकार के पास जो खजाना है वो किसका है, वो टैक्स का कलेक्शन ही है। तो इसके आधार पर उन्होंने हाई कोर्ट के इस निर्णय को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक बात उसमें दूसरी उन्होंने कही, दूसरी वो ये कही दोस्तों कि उसी दौरान जब ये दंगे हुए थे तो लोगों के घर जले, लोगों के घर नष्ट हुए, लोगों के जो कमर्शियल जो स्थान थे, जो बिजनेस सेंटर थे, जो दुकानें थी वो जली, उनके लिए राज्य सरकार ने बकायदे 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की कि ठीक है उनके लिए वो 50,000 रुपए की मदद देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस दलील को क्यों स्वीकार किया। अब यहां ध्यान देने की बात है कि वो धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण को स्वीकार नहीं कर रही है लेकिन जो रहने के स्थान हैं या उनके जो बिजनेस सेंटर हैं उनके लिए अनुग्रह राशि की को स्वीकार कर रही है, उस पर उन्होंने अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। ये सबके सब फंडामेंटल राइट्स हैं। उन्होंने अनुच्छेद 21 का हवाला इस रूप में दिया कि क्योंकि उसमें जीवन का अधिकार है, जीवन का और निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, और जो आवास है और जो बिजनेस है, देखिए अगर मेरी दुकान जल गई है तो मैं तो हो गया, मेरा तो पालन पोषण खत्म हो गया, तो मेरा जीवन ही खतरे में पड़ गया है। तो चूंकि जीवन के अधिकार के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, तो इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया कि नहीं ठीक है, आप मकान जो नष्ट हो गए हैं, जो लोगों के बिजनेस जो केंद्र वाणिज्य केंद्र नष्ट हो गए हैं, उनके लिए आप अनुग्रह राशि दीजिए, लेकिन मंदिर और धार्मिक स्थलों के, मंदिर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धार्मिक स्थल, क्योंकि देखिए हमें नहीं मालूम है कि उसमें मंदिर भी हो सकते हैं, मस्जिद भी हो सकते हैं, गुरुद्वारा भी हो सकते हैं, तो यहां जो सही शब्द होगा इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हम कहेंगे धार्मिक स्थल या आराधना स्थल जो भी है उनके लिए अनुमति नहीं दी। मित्रों ये पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह के जो उदाहरण है इससे पहले भी है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जब हमारे देश के गृह मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी थे, उस समय एक बात आई थी कि जो हमारा सोमनाथ का जो मंदिर है उसके उसके जो जीर्णोद्धार का जो दायित्व है वह सरकार अपने हाथ में ले, वह उसका जीर्णोद्धार कराए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, सरकार इसकी मरम्मत नहीं कराएगी। अब आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब ऐसा नहीं, भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे और उनकी अपनी मान्यताएं थी जो सबका जो सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई भी थी, लेकिन जब आप सत्ता पर बैठते हैं तब आपकी जो सबसे बड़ी जो बड़ा जो धर्म ग्रंथ होता है, इनफैक्ट वो हमारा संविधान होता है, और हमारे संविधान में सीधे सीधे धर्म निरपेक्षता की बात कही गई है, पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, और अनुच्छेद 27 इसकी इजाजत देता ही नहीं है। तो वहां फिर लोगों ने आप जो भी बाद में किया हो, लेकिन सरकार ने उसका पुनर्निर्माण नहीं कराया। तो मित्रों यह है अनुच्छेद 27। मैंने आपसे शुरू में वायदा किया था कि मैं अनुच्छेद 27 और 28 पर बात करूंगा, मैंने 28 पर अभी बात नहीं की है और मैं अभी बात कर भी नहीं रहा हूं, यहां तक कि 27 पर भी जितनी बातें की जानी चाहिए थी उतनी बातें अभी मैं फिलहाल कर नहीं पाया हूं, क्योंकि मुझे यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है, इसलिए इस टॉपिक को मुख्य विषय के तहत हम लोग कल और डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक दो मिनट का वक्त लेकर के इसे मैं जल्दी जल्दी में पूरा कर दूं। तो दोस्तों अब है अखबार क्लिपिंग्स की बात, तो हमेशा की तरह ही है कि मैं आज भी आप सबको ढेर सारी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने हिसाब से उसके साथ न्याय करने की कोशिश कीजिएगा। जहां तक ईमेल लिखने वाले मेरे सभी दोस्तों का सवाल है उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं अभिषेक, अविनाश, रोहित कुमार परिहार सिरोही राजस्थान से, आशुतोष तिवारी, योगेश विश्वकर्मा, सौरव राज, राकेश कुमार गौड़ और विपुल शुक्ला उन्नाव उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।